हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब ये देखकर तो सिद्धार्थ का गुस्सा पूरी तरह से चढ़ चुका था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वीडियो करवाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि झलक ही है। ये सच सामने आने पर उसकी हैरानी और गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। वो सोच रहा था कि ये लड़की अभी तक उसके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी और अब तक उसे ही गलत साबित करने पर तुली हुई थी। और वो मन ही मन बोला, इसका मतलब है कि जो आकांक्षा कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। हो सकता है कि झलक ने आकांक्षा को धमकी दी हो और झलक ओबेरॉय परिवार से अपने ठुकराए जाने का बदला लेना चाहती हो, और उसने अपने बदले के लिए खुराना परिवार की इज्जत की भी परवाह नहीं की और आकांक्षा और मेरी शादी ना हो इसीलिए ये सब कुछ किया। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अपने बदले के लिए तुम्हें खुराना परिवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने झलक, बहुत बड़ी गलती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ एहसान पनप चुका था। काफी चाहने लगा था मैं तुम्हें, लेकिन मैं जानता था कि तुम समाज के सामने प्रस्तुत करने वाली बीवी नहीं हो। तुम में उठने बैठने तक की तमीज नहीं है और शायद इसीलिए मैं तुम्हें कभी अपना नहीं पाया। इसलिए इतनी घटिया चाल चलकर तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझसे शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि इस घटिया तरीके का यूज करने के बाद तुम आराम से खुराना परिवार की संपत्ति का भोग विलास कर लोगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस तरह से खुराना परिवार की इज्जत के साथ खेलने का क्या अंजाम हो सकता है। तुम जानती हो झलक, एक पल के लिए मैं तुम्हें माफ भी कर देता अगर तुमने ये सारा ड्रामा किसी और दिन किया होता। अपना प्लान पूरा करने के लिए तुम्हें मेरी दादी का दिन स्पॉइल नहीं करना चाहिए था, और दादी तो तुम्हें खुद धर्म पोती बनाने वाली थी ना। उसके बाद तुम्हें खुराना परिवार का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिल जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो थोड़ा बहुत नहीं बल्कि तुम्हें तो खुराना परिवार की मालकिन बनना था, इसीलिए तुमने ये चाल चली। तो तुमने क्या सोचा, तुम सब कुछ पालोगी और अपने परिवार से भी बदला ले लोगी और खुराना परिवार की दौलत का इस्तेमाल कर लोगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सोचते हुए सिद्धार्थ बहुत ही भयानक लग रहा था और फिर एक बार और बरसते हुए बोला, अब मैं बताऊंगा कि सिद्धार्थ खुराना क्या चीज है। वो वीडियो क्लिप लेकर सिद्धार्थ ने रौनित को इशारा किया और देर ना करते हुए उस वेटर को शिकारी कुत्तों के आगे डाल दिया गया। बाकी सबको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, क्योंकि दादी की पार्टी वाले दिन से उन लोगों की लगातार धुलाई हो रही थी। न खाने को दिया गया था न पीने को, जिसकी वजह से सभी होटल स्टाफ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसके बाद सिद्धार्थ सीधे अपने मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। फिलहाल झलक इस वक्त हॉल में दादी के साथ बैठी हुई थी। वहीं थोड़ी दूरी पर रणविजय अपने लैपटॉप के साथ बैठा हुआ था, हालांकि लैपटॉप में काम कम कर रहा था और झलक को ज्यादा देख रहा था। झलक को महसूस हो रहा था कि रणविजय उसे ही घूर रहा है। झलक अंदर ही अंदर काफी ज्यादा चिढ़ी हुई थी और सोच रही थी, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। इसे इसके कमरे में कितनी सारी गालियां सुनाकर आई हूं, लेकिन देखो फिर भी घूर कर देख रहा है। लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रणविजय का मसला क्या है और वो उसकी जान क्यों लेना चाहता था, और अब प्यार प्यार का ये कौन सा नया खेल खेल रहा है, और क्या इसे लगता है मैं इसे प्यार करूंगी, इससे शादी करूंगी। कितनी गलतफहमी है इस इंसान को खुद को लेकर। झलक उल्टे सीधे मुंह बनाते रणविजय को देखते हुए सोचे जा रही थी। वहीं रणविजय मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, अब तक तो झलक ने अपनी सोच में मुझे बेहद खतरनाक मौत दे दी होगी। फिलहाल इसी दौरान झलक के फोन पर अचानक आर्यन के लगातार मैसेज आने शुरू हो गए थे। आर्यन एक बार फिर से झलक से पूछ रहा था कि वो कैसी है, ठीक है या नहीं, उसे किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। अब झलक मन ही मन सोचने लगी, मेरी जिंदगी में आजकल आसपास जो हैं उन्हें देखें तो, एक तरफ सिद्धार्थ जैसा बदतमीज आदमी आया है और दूसरी तरफ ये सन की रणविजय, लेकिन इन सब में अगर कोई सबसे ज्यादा अच्छा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन है। आर्यन ने कभी भी मुझे जज नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन झलक चाहकर भी अपने दिल में आर्यन के लिए कोई जगह नहीं बना पा रही थी। उसका कारण वो खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन आर्यन को सिर्फ एक अच्छे दोस्त की नज़र से ही देखती आई थी। इसके अलावा उसने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। उसे केवल एक अच्छे दोस्त और बड़े भाई की ही फीलिंग आर्यन से आई थी। फिलहाल दादी से हल्की फुल्की इधर उधर की बातें करने के बाद झलक ने सोचा उसे दादी से एक बार फिर पूछना चाहिए। लेकिन तभी दादी झलक को देखकर बोली थी, बेटा तुम परसों के लिए पूरी तरह से तैयार तो हो ना? कल हमें शिवजी की पूजा के लिए अपने प्राचीन मंदिर जाना है, वहीं पर हम पूजा करेंगे। तब झलक ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। वहीं रणविजय ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया और सोचने लगा था कि ये लड़की तो कल तक सिद्धार्थ के साथ रहने तक के लिए तैयार नहीं थी और अभी इस तरह से बोल रही है कि पूजा पाठ में हिस्सा ले सकती है। हालांकि झलक ने सिर्फ दादी की खुशी के लिए हाँ कहा था, उसका किसी तरह की कोई पूजा में शामिल होने का खास इरादा नहीं था। फिलहाल तभी झलक दादी की ओर देख कर बोली, अच्छा दादी आपने एग्जैक्टली बताया ही नहीं, ये मिस्टर खुराना और रणविजय जी का रिश्ता क्या है? क्या ये दोनों सगे भाई हैं या इनका कोई दूर का रिश्ता है? जबकि आपने बताया था कि मिस्टर रणविजय सिद्धार्थ जी के रिश्तेदार हैं, चाचा के बेटे हैं। अब जैसे ही झलक ने जानबूझकर रणविजय को देखते हुए बात उठाई तो दादी के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ अलग ही तरह के भाव उभर आए थे। उन्होंने खुद को शांत करते हुए कहा, वो बेटा रणविजय हमारे बड़े बेटे का बेटा है। हमने बहुत पहले ही जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया था। फौरन की सारी जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम कर दी थी और वहीं वो अपने बेटे के साथ बस गया था और रणविजय ने अपने पापा का सारा बिजनेस संभाल लिया था और यहाँ की सारी प्रॉपर्टी हमने सिद्धार्थ के पापा के नाम कर दी थी जो ऑटोमेटिकली सिद्धार्थ के नाम हो गई। तो यहाँ की सारी प्रॉपर्टी सिद्धार्थ संभाल रहा है। अब जैसे ही दादी ने ये बात बोली कहीं ना कहीं रणविजय के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं आया, लेकिन झलक को कुछ अजीब सा लगा था क्योंकि कुछ तो ऐसा था जो उसे खटक रहा था और वो दादी को देखकर समझ रही थी कि दादी की बातें पूरी सच नहीं है। दादी के साथ रहते रहते झलक इतना तो समझ चुकी थी कि दादी कब झूठ बोलती हैं और कब सच। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन फिलहाल झलक ने तुरंत ही आगे कहा, अच्छा दादी तो फिर ये मिस्टर रणविजय और सिद्धार्थ जी में इतना लड़ाई झगड़ा या गुस्सा क्यों रहता है? ऐसा क्यों लगता है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हों? अब जैसे ही झलक ने अचानक ये कहा दादी के हाथ रुक गए। वहीं रणविजय ने तुरंत गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, झलक मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। फिलहाल तुम्हें ये सोचना चाहिए क्या तुमने अपना मुंह मोड़ने का फैसला ले लिया है। क्या तुम सिद्धार्थ से तलाक लेने के लिए तैयार हो? क्योंकि तुम मेरे बारे में इतनी ज्यादा खोजबीन कर रही हो तो मुझे लग रहा है तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। अब जैसे ही रणविजय ने बिना दादी के परवाह किए बेशर्मी से ये कहा, झलक पूरी तरह से हैरान हो गई। वहीं दादी के चेहरे पर थोड़ी सी बौखलाहट आ गई। वो बोली, बेटा कैसी बातें कर रहे हो, इसने ऐसा नहीं कहा, इसको जानने का मतलब ये नहीं था। वैसे भी ये बच्ची साफ दिल की है, जो उसके दिल में रहता है वो बोल देती है। तब रणविजय अभी कुछ और कहना चाहता था कि तभी वहाँ एक आवाज गूंजी, गुड इवनिंग गाइज। और जैसे ही ये आवाज़ सुनाई दी सब लोग अचानक उस दिशा में देखने लगे। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए स्टोरी मानिया।